मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 28 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं शशिकांत मिश्रा रायबरेली उत्तर प्रदेश से और ध्रुव कुमार झा नई दिल्ली से। तो शशिकांत और ध्रुव, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है और सामान्यतया आपको ध्यान होगा कि सोमवार को मैं अक्सर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के तौर तरीकों यानी कि टेक्निक के बारे में पहले बात किया करता था। पिछले सप्ताह भी मैंने उसी तरह से सिविल सर्विस की क्या चुनौतियां होती हैं, सच्ची चुनौतियां, सही चुनौतियां क्या हैं, उन पर बात की थी। तो उसी के कंटिन्यूएशन में मैंने सोचा कि आज मुझे उत्तर देने की जो चुनौती होती है उसके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। तो आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी एक घटना की मैं आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगा। और सच पूछे तो इस घटना के माध्यम से भी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनफैक्ट आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी कैसी चाहिए। जिस घटना की मैं चर्चा कर रहा हूं फ्रेंड्स, इसे न्यूज में, रेडियो न्यूज में भी बहुत स्थान नहीं मिला है, टीवी न्यूज पर भी ये नहीं है और चैनल पर भी ये नहीं है, लेकिन अखबारों में है और अखबारों में भी हिंदी अखबारों में उतना नहीं है जितना ये अंग्रेजी अखबारों में है। वो अपने अपने रीडरशिप के हिसाब से चीजों का चयन करते हैं, लेकिन घटना बहुत महत्वपूर्ण है। अब होता क्या है कि घटना बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात मैंने कही। फिर आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि फिर ये रेडियो न्यूज पर क्यों नहीं है, ये टीवी न्यूज पर प्रोमिनेंटली क्यों नहीं है। देखिए, न्यूज का चयन लोग अपने अपने ढंग से करते हैं और उस दिन और दूसरी कौन सी खबरें हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि जो छूट गई खबर है वह कितना मायने रखती है। इसीलिए फ्रेंड्स, एकमात्र पैमाना यह नहीं होता है करंट अफेयर्स का कि उन्हें रेडियो और दूरदर्शन पर आना ही आना चाहिए, नॉट एट ऑल। वह एक बहुत बड़ा पैमाना जरूर है और सच पूछिए तो लगभग 75 से 80% जो करंट अफेयर्स की घटनाएं होती हैं वो रेडियो न्यूज और दूरदर्शन पर ही बेस्ड होती हैं। ये जो रिमेनिंग 25% है, जो 20-25% घटनाएं हैं, वो डेफिनेटली अगर रेडियो टीवी पर है भी तो बहुत ही छोटे रूप में है। अखबारों में इन्हें जगह मिलती है और कभी कभी तो ये होता है कि अखबारों में भी जब जगह मिलती है तो बहुत ही छोटे रूप में जगह मिलती है। इसलिए जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें हर समय इसके प्रति सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना छूट जाए। इसी तरह की एक महत्वपूर्ण घटना है, शायद आप लोगों में से किसी के ध्यान में इससे पहले आई भी होगी यह घटना, अभी कल की घटना नहीं है या दो दिन की घटना नहीं है, घटना इससे पहले घटित हो गई है लेकिन अब उसने थोड़ा सा एक बड़ा रूप ले लिया है और वह है वेनेजुएला की घटना। वेनेजुएला मतलब वेनेजुएला में एक जबरदस्त किस्म का संकट पैदा हो गया है, राइट। इससे पहले अखबारों में इसे इतनी जगह नहीं मिल रही थी, हिंदी अखबारों में तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन अब अखबारों में इसे काफी जगह मिलनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि इस घटना ने अब एक बड़ा रूप ले लिया है। अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आप इस घटना को कैसे लेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, यह जानना बहुत जरूरी होता है मित्रों। अब आपको कोई वेनेजुएला का इतिहास नहीं पढ़ना है, वेनेजुएला के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठी नहीं करनी है। जब आप अपने इंटरनेशनल रिलेशन के चैप्टर को सिलेबस को उठाते हैं तो आप देखें कि आपको किस तरीके से उसे देखना है, आपको पता लग जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा वहां से। वेनेजुएला एक देश है, लैटिन अमेरिकी देश है, तो हम इसे दो रूपों में देखेंगे। नंबर वन कि विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो वेनेजुएला का संकट, चलिए हम इसे कहते वेनेजुएला का संकट, तो इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, ठीक है, विश्व पर प्रभाव एक बात हो गई, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और इनफैक्ट इन दोनों में से हमारे लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है भारत पर इस वेनेजुएला के संकट का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि दो पॉइंट हो गए, पहला विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दूसरा हो गया इस घटना का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दो पॉइंट हो गए जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। लेकिन इसका एक और भी पॉइंट है और वो पॉइंट ज्योग्राफी से रिलेटेड है, भूगोल से संबंधित है। जब आप अपने भूगोल का सिलेबस देखते हैं तो उसमें बकायदे मेंशन किया हुआ है विश्व का भूगोल। अब सवाल यह है कि विश्व के भूगोल में क्या आपको पूरी दुनिया की जानकारी हासिल करनी है, और वो भी जनरल स्टडीज की दृष्टि से, कोई आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में तो इसे पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि चाहे वो प्री में हो या मेंस में हो, जब किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है तो स्टूडेंट को ये लगता है जो बहुत सतर्क नहीं है या जो उस दौर में तैयारी नहीं कर रहे थे, बाद में उस अनसॉल्व पेपर को देख रहे हैं तो उनके दिमाग में ये गलत धारणा आती है कि इसका मतलब यह हुआ कि सभी के बारे में जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि वेनेजुएला के बारे में प्री में पूछ लिया गया। देखिए भूगोल का जो मैं संदर्भ दे रहा हूं, वेनेजुएला के बारे में भूगोल की दृष्टि से जानना केवल प्री में हमारी मदद करेगा, प्री में, मेंस में नहीं पूछा जाएगा भूगोल को लेकर के, क्योंकि भूगोल आपके मेंस में भी है। तो वेनेजुएला के भूगोल पर मेंस में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वेनेजुएला के भूगोल के कुछ बिंदुओं को प्री में उठाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। मेंस में जो पूछा जाएगा वो मैं दो पॉइंट आपको बता चुका हूं कि विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दूसरा पॉइंट भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत इसको कैसे हैंडल करेगा। तो आइए अब हम इसी के आधार पर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और अब आप देखें कि जब आप वेनेजुएला की बात करते हैं तो किन किन बिंदुओं को लेकर के आपको बकायदे वेनेजुएला की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो वेनेजुएला है ये है कहां, किस महाद्वीप में है। तो जब आप एटलस उठा करके देखेंगे, अखबारों में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, तो आपको पता लगेगा कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, ये तो बहुत ही सरल सा प्रश्न हो गया और सिविल सर्विस में इस तरह से पूछा भी नहीं जाएगा, राइट। फिर जब आप एटलस में जाते हैं और इसके लोकेशन को देखते हैं तो फिर लोकेशन के आधार पर जरूर प्री में पूछे जाने की संभावना बन जाती है। उदाहरण के तौर पर जब हम लोकेशन देखते हैं तो फिर पाते हैं कि ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके किस तट पर है, तो आपको पता लगेगा कि अब आप देखिए कि हम बारीकी में जा रहे हैं तो पता लगा कि वो उत्तरी तट पर है, उत्तरी तट पर है। और ये आपको याद नहीं रहेगा तब तक जब तक कि आप इसे एटलस में देखेंगे नहीं, तो ठीक है उत्तरी तट पर हो गया। इसके बाद फिर हम जब समुद्र की बात करते हैं कि भाई किस समुद्र के में है ये, तो आपको सी की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिए मैं ओशन की बात नहीं कर रहा हूं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस तरह से आपको उलझाने की कोशिश की जाती है। जब हम सी की बात करें SEA तब वो है कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। लेकिन अगर हम ओशन की बात करेंगे, महासागर की बात करेंगे, तब वो हो जाता है नॉर्थ एटलांटिक ओशन, उत्तरीय अंध महासागर। अब ये फर्क हो गया। इसके बाद फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहां मैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स को विशेष रूप से याद दिलाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये जो वेनेजुएला है ये 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, 10 डिग्री अक्षांश, बस मैं केवल इतना ही आपको बता रहा हूं, 10 डिग्री अक्षांश, राइट, उत्तरी अक्षांश से या दक्षिणी अक्षांश से, चलिए उसको हम छोड़ते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये उत्तरी अक्षांश से। तो 10 डिग्री, अगर अक्षांश को छोड़ दीजिए, आप उत्तर दक्षिण में आप भ्रमित हो जाएंगे, आप ये मान करके चलिए कि ये 10 डिग्री पर है वेनेजुएला, मतलब वो 10 डिग्री अक्षांश उसके बीच से लगभग लगभग गुजरती है। अब सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में इतना सेंस मुझे लगता है कि होना चाहिए कि अगर कोई स्थान 10 डिग्री अक्षांश पर है तो वहां का वेजिटेशन कैसा होगा, वहां की जलवायु कैसी होगी, गर्मी कितनी पड़ती होगी, बारिश कैसी होती होगी। और अगर आपको इसका अनुमान लग गया तो मान करके चलिए कि उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी और वो सिविल सर्विस आपसे इन बातों की थोड़ी सी अपेक्षा भी करता है। तो दोस्तों 10 डिग्री अक्षांश। चूंकि ये समुद्र तट पर स्थित है, कैरेबियन सी मैंने आपको बताया, और इसके आसपास अगर एटलस में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, उसके नीचे ब्राजील है, उसके एक साइड में सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है जहां पर हमारे भारतीय 150-200 साल पहले भेजे गए थे और वहां भारतीय मूल के बहुत से लोग रहते हैं जिनकी चर्चा मैंने 3-4 दिन पहले आप लोगों से प्रवासी भारतीय के संदर्भ में की थी, वो वेनेजुएला से सटे हुए हैं बिल्कुल, सूरीनाम वगैरह देश, एक तरफ ब्राजील है। तो अब आपको धीरे 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 इस बात की जानकारी होती चली जाएगी, अगर आपने भूगोल पढ़ लिया हो तो आपकी वो जानकारी और भी ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी कि अगर ये समुद्र तट पर है और 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है तो यहां की विशेषताओं में दूसरी क्या चीजें शामिल होंगी। तब आपका दिमाग हो सकता है कि दौड़े कि यहां जो बायोडायवर्सिटी होगी वो बहुत जबरदस्त होगी, बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी, हाई लेवल की बायोडायवर्सिटी होगी। और अगर समुद्र के किनारे है तो इस बात की भी बहुत संभावना है कि यहां तेल के बहुत बड़े बड़े भंडार हो, खनिज तेल के भंडार हो, पेट्रोलियम पदार्थ यहां बहुत ज्यादा हो। इसके बाद आप आबादी को देख लीजिए, जनसंख्या के प्रति थोड़ा सा एक रुझान रहता ही है, लगभग 3.25 करोड़ की यहां की आबादी है। ये केवल भूगोल के बारे में जानकारी है जो आपके लिए पर्याप्त होगी। अगर इतिहास के थोड़े से आप हिस्से में जाना चाहें तो आप कह सकते हैं कि स्पेन ने इस पर शासन किया था, जब पूरी यूरोप के जो देश थे, जब पूरी दुनिया में फैल करके अपने उपनिवेशवादी शासन स्थापित कर रहे थे तो स्पेनिश यहां आए थे। और आपने अगर इतिहास पढ़ा हो, विश्व इतिहास पढ़ा होगा, तब आप अपनी उस जानकारी को यहां जोड़ लीजिए कि जो लैटिन अमरीकी देश है उसके ज्यादातर देशों में स्पेन का शासन रहा है। तो बट नेचुरल है कि अगर स्पेन का शासन रहा है तो वहां की जो भाषा होगी वेनेजुएला की वो स्पेनिश होगी। 1522 में यहां स्पेन ने शासन किया था, लेकिन 1811 में फिर उससे आजाद ये जो वेनेजुएला है हो चुका है, थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए। दोस्तों ये इसके भूगोल का पक्ष है, राइट। अब हम देखेंगे कि इसका जो विश्व पर प्रभाव या भी जो संकट है वो किस कारण है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसे थोड़ा सा हम जान लेते हैं। और यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो मुख्य विषय के रूप में मैंने आपसे कहा था कि जो उत्तर देने की चुनौती है उस पर हम लोग बात करेंगे, मित्रों अब समय नहीं बचा है, मैं इसे ही थोड़े से विस्तार के साथ बताना चाहूंगा, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी ही उत्तर देने की चुनौती के बारे में भी बातें करेंगे, मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। अब आप देखिए कि वेनेजुएला का संकट क्या है। वेनेजुएला में एक निर्वाचित सरकार है, आपको अब अपने दिमाग में फ्रेम बनाना होगा और बहुत स्पष्ट रूप से तस्वीर बनानी होगी। एक निर्वाचित सरकार है, उस निर्वाचित सरकार के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम भी आपके दिमाग में होना चाहिए, उनका नाम है निकोलस मादुरो, मादुरो यानी कि वो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। ये मादुरो, वहां की जो राजधानी है काराकस, ये नाम आपको इसलिए जानने जरूरी है, जैसे कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा वेनेजुएला का संकट न होकर के काराकस का संकट। अब आप कहेंगे काराकस का संकट क्या है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वेनेजुएला का ही संकट है। इसी तरह से आपको मिल जाएगा कि जो अमेरिका है वो मादुरो का विरोध कर रहा है, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए भी मादुरो का विरोध कर रहा है अगर अमेरिका, तो इसका मतलब हुआ कि जो निर्वाचित राष्ट्रपति है वो उसका विरोध कर रहा है। फिर जब आप देखेंगे कि नहीं, जो रशिया है वो जो विपक्ष के नेता है उसका विरोध कर रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनका नाम जुआन गुएडो है, क्योंकि वो फिर पक्ष विपक्ष निर्वाचित अनिर्वाचित की बात नहीं करेंगे, वो राष्ट्रपति का नाम लेने लगेंगे। और अगर आपके दिमाग में तस्वीर स्पष्ट नहीं है कि ये निर्वाचित है या जबरदस्ती थोपे गए हैं, तो फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे और आपके दिमाग की जो तस्वीर है वो धुंधलाने लगेगी। तो कुल मिलाकर के मामला यह है मित्रों कि वहां के जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं मादुरो हैं, वहां के जो विपक्ष के नेता हैं जुआन गुएडो हैं, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। और अभी वेनेजुएला में बहुत भयानक जो संकट चल रहा है वो चल रहा है मुद्रा स्फीति की। वहां की जो मुद्रा की कीमत है वो भयानक रूप से कम हो चुकी है, मतलब सोचिए कि 83,000% तक मुद्रा स्फीति, 83,000%, कैन यू इमेजिन, मतलब वहां की मुद्रा का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है। तो सोच करके देखिए कि वहां की जनता कितनी परेशान होगी। तो अगर जनता परेशान है तो निश्चित रूप से उसका दोष सत्ता को मिलेगा, तो मादुरो के खिलाफ पब्लिक है, उसका फायदा उठाकर के विपक्ष ने, विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने अपना राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अमेरिका को बस मौका मिल गया, अमेरिका को मौका इसलिए मिल गया कि जो वेनेजुएला है, ये पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है यहां, पेट्रोलियम पदार्थों का। और आप देखेंगे नक्शे में तो अमेरिका से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। अब अमेरिका की राजनीति रहती है कि कैसे पेट्रोलियम वाले देशों पर अपना दबदबा कायम किया जाए, तो उसे मौका मिल गया। उन्होंने विपक्ष के नेता को एनकरेज किया और इन्हें मान्यता दे दी कि नहीं, हम इसे ही सरकार मानते हैं, क्योंकि जो निर्वाचित राष्ट्रपति थे वो अमेरिका को घास नहीं डालते थे। तो जब अमेरिका ने विपक्ष के राष्ट्रपति को, आप कह लीजिए स्वघोषित राष्ट्रपति को समर्थन दिया, तो उसके विरोध में जो दूसरा दल है वो खड़ा हो गया विश्व का। वो कौन कौन हो सकते हैं, अगर आप जरा सा भी इंटरनेशनल अफेयर्स की जानकारी रखते हैं तो बट नेचुरल है कि अमेरिका के विरोध में कौन कौन से देश है। चीन का नाम तो आप तुरंत ले सकते हैं, रूस का भी नाम ले सकते हैं, टर्की का भी नाम ले सकते हैं, क्यूबा का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन चलिए टर्की क्यूबा का नाम नहीं, तो आप कम से कम रूस और चीन का नाम तो ले सकते हैं। ये लोग अमेरिका के विरोध में, इसका मतलब ये हुआ कि ये खुल करके, ये जो देश है रूस चीन टर्की मैक्सिको, ये मादुरो के समर्थन में आ गए। इसका मतलब यह हुआ कि अब दुनिया दो खेमों में बट गई, एक वो जो मादुरो का समर्थन कर रहे हैं जिसमें रूस और चीन है, और दूसरे वो जो स्वघोषित राष्ट्रपति गुएडो का समर्थन कर रहे हैं जिसमें अमेरिका है, अमेरिका के साथ कनाडा है, कनाडा के साथ ब्रिटेन है, ब्रिटेन के साथ अर्जेंटीना और ब्राजील भी है, ब्राजील जो आपके वेनेजुएला का पड़ोसी है, और इसके साथ साथ यूरोपियन संघ के देश है, ये अमेरिका के साथ है। इसका मतलब यह हुआ कि वेनेजुएला के मामले में पूरी की पूरी दुनिया, आप देख रहे हैं, दो खेमों में बट गई। और इस तरीके से दो खेमों में अगर दुनिया बढ़ जाती है तो इससे विश्व शांति पर क्या असर पड़ सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। जो सेकेंड पॉइंट है वो इंडिया का है, इंडिया का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इंडिया के लिए आप तीन पॉइंट ले सकते हैं। पहला तो यह है कि जो वेनेजुएला है उससे तेल मंगाने वालों में दो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, जिसमें एक है अमेरिका और दूसरा है भारत। भारत वेनेजुएला से बहुत तेल मंगाता है, और अगर अमेरिका ने तेल मंगाने पर प्रतिबंध लगा दिया तो भारत के लिए फिर एक बार संकट पैदा हो जाएगा, राइट, नंबर वन। नंबर दो, हमारे यहां की बहुत सी जो तेल कंपनियां हैं ऑयल, वो वेनेजुएला की तेल उद्योगों से जुड़ी हुई है, इन कंपनियों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट है कि वेनेजुएला में भारत की जो दवाएं हैं, जो मेडिसिन है, उसका बहुत बड़ा बाजार है, तो हो सकता है कि हमारे उस मेडिसिन के बाजार को भी, व्यापार को भी धक्का पहुंचे। हमारे तीन सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न हैं। बस केवल अगर आप इन तीन बिंदुओं को ध्यान में रख करके भारत की व्याख्या कर लेते हैं, विश्व की व्याख्या कर लेते हैं, वेनेजुएला की थोड़ी सी ज्योग्राफी को समझ लेते हैं, तो ये मान करके चलिए कि यह टॉपिक आपका पूरा हो गया। और वेनेजुएला के इस टॉपिक के माध्यम से, इनफैक्ट अगर सच पूछिए तो मैं इस तरह के टॉपिक्स की तैयारी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कैसे की जानी चाहिए, उसका भी एक मॉडल आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा था। तो मित्रों, एक बार फिर से मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि शुरू में मैंने जो मुख्य विषय आपको सुझाया था उस मुख्य विषय पर मैं बात नहीं कर सका हूं, लेकिन मैं अपना वायदा पूरा करूंगा, इस बात का मैं आपसे वायदा करता हूं, राइट। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, वेद प्रकाश पटेल नई दिल्ली से, एन हरिहरन दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से, अभिसारिका, दीपांशु नामदेव उरई उत्तर प्रदेश से, संजय कुमार सहारनपुर से, शैलेंद्र कुमार शीतलपुर कनौटा से, और हेतराम प्रजापत। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।